हरे कृष्णा। थोड़ा आप लोगों को उसको बारे में इतिहास जानना जरूरी है। 750 साल पहले ये प्रभु रामचंद्र का जो जन्म का स्थान था, मंदिर था, उसको तोड़वाया गया और बाबर नाम के एक भयंकर यवन ने मस्जिद बांधी। उसके बाद से लेकर आज तक कई साधुओं ने, संतों ने आंदोलन किया है इसको पुनर्स्थापित करने के लिए। कितने लोगों ने बलिदान दिया है इसमें, कई साधुओं की कत्ल की गई यवनों द्वारा, फिर दुर्भाग्य से हमारे लोगों के द्वारा भी। देश को स्वतंत्र करने के बाद में सो कॉल्ड तथाकथित हमारे राज्यकर्ताओं ने भी उनको कष्ट दिया है। हमारे राज्यकर्ताओं ने भी भारत देश में रहकर भारत के राम मंदिर के खिलाफ गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बोलो कितनी शर्म की बात है। जब यवनों का राज था, ब्रिटिशों का राज था, चलो समझ सकते हैं कि उनका तो राज था तो क्या करेंगे, वो तो भारतीय थे नहीं। लेकिन तथाकथित स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद भी हमारी तथाकथित गवर्नमेंट ने हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दायरा किया था और क्या बोल रहे थे, ये साबित करो कि ये राम की जन्मभूमि है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको साबित करना है आपकी माँ कौन है ना। आप बोल रहे ये मेरी माँ है, आप बोल साबित करो उसको, फिर टेस्ट कर रहे हैं और माँ को साबित कर रहे हैं कि तू मेरी माँ है। कितना अपमान है हमारा, देखो कितना दुर्भाग्य है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम लोगों को हमारे धर्म में रुचि नहीं है, इसलिए ऐसे केस कोर्ट में जाते हैं। जाओ उधर सऊदी अरब में जाओ और बोलो कि अल्लाह को भगवान के रूप में प्रूव करो, देखो क्या होता है उधर। जाओ ट्राई करके देखो, कभी वहाँ जाके बोलो ये मक्का मदीना में क्या है, सब बेकार के टाइम पास है, ये सब रद्द करना चाहिए और कोर्ट में याचिका दाखिल करो कि हम नहीं मानते इसको। आपको रातों रात कत्ल किया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किधर गए आप। ये केवल हमारे देश में होता है, क्योंकि हमारे देश में जितने भारतीयवासी भारतवंशी लोग हैं उनको भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए संतों का वध होता है, संतों को बलिदान करना पड़ता है। क्यों बलिदान करना पड़ा है, पढ़ना चाहिए बताओ ना। हमारे देश के राष्ट्र भगवान है वो राम, उनका जन्मस्थान को तोड़वाया जा रहा है और उसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनको भी मारा जा रहा है, ऊपर से याचिका भी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी एक संत थे, गर्व है हम उनको संत पर उसके, उनका नाम है राम भद्राचार्य। आप लोग सब देख रहे हैं क्या, सुन रहे हैं सब लोग, बोलो हरि बोल। तो राम भद्राचार्य जो है वो अंधे संत हैं, बचपन में आंखें गए उनकी, अंधेपन में ब्रह्मचारी बनकर सारे शास्त्र पढ़े हैं, 125 करोड़ श्लोक उनको याद है पूरे। उन्होंने राम जन्मभूमि के विषय में अंधा होने पर भी 445 प्रूफ दिए शास्त्र से, उसमें से 440 प्रूफ लोग कोर्ट ने एक्सेप्ट किए और 5 अभी भी बहस चल रहा है। लेकिन 440 वेदों के शास्त्रों में से प्रूफ निकाल के दिया कि यही जन्मस्थान है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मानना पड़ा, उन्हें 68 एकड़ की जमीन राम के मंदिर के नाम कर दी, राम का एक ट्रस्ट बनाया बकायदा कायदेशीर और फिर वो मंदिर बनाए। हमने कभी रामायण पढ़ी नहीं ना, हमारे घरों में रोज शाम को दादा लोग और नाना लोग रामायण पढ़ते थे बैठकर, और सब बचपन में रामायण राम के बारे में जानते थे, बिना पढ़े तो सुनते थे ना। अभी टीवी आ गया उसकी जगह पे, रामायण की जगह पे टीवी आ गया, फिर सद्भाग्य से वो टीवी पर भी रामायण आ गया, फिर देश का भाग्य खुल गया, धार्मिकता बढ़ी, फिर उसमें महाभारत आ गया, फिर धार्मिकता बढ़ी। नहीं तो पूरा धार्मिकता छीनने के लिए बनाया गया उसको, टीवी को पूरा आपका ध्यान बटाने के लिए, ध्यान को भ्रष्ट करने के लिए, मन को भ्रष्ट करने के लिए बनाया, पूरा विदेश का कल्चर यहाँ लाने के लिए बनाया गया उसको, टीवी को। हजारों चैनल है उसके पर, सब जगह नंगा नाच चल रहा है। तो अभी उसमें देखो कैसा है ना, हर चीज़ में विल पावर होनी चाहिए। जब राज्यकर्ता के मन में विल पावर आ गई तो मंदिर भी बना, सब कुछ हो गया। वाराणसी में भी पूरा गंगा जी को स्वच्छ करके पूरा फर्स्ट क्लास बना दिया है, लोगों को जाने का दिल कर रहा है। वहाँ पर जनसंख्या, तीर्थ यात्रा की संख्या बढ़ रही है और आप लोगों को जाना चाहिए। अगर हमारी गंगा है, हमारा वाराणसी है, तो जाना के दर्शन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे काशी विश्वनाथ है, हमारे लाल लल्ला राम लल्ला है, जाना चाहिए। ऐसा मंदिर बनाया अभी कि हजारों साल तक ऐसे ही रहेगा। हम लोग जाए चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ भी जाएंगी, फिर भी मंदिर वैसे ही रहेगा। तो 22 तारीख को उसका उद्घाटन हो रहा है। तो हम तो कहते हैं कि राम का मंदिर तो अयोध्या में बनेगा, हमारे मन में कब बनेगा उसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। जय श्री राम करने से कुछ नहीं होता है, अच्छा है नाम लेने से भगवान से, लेकिन वो जय श्री राम का मंदिर जो है वो अयोध्या के साथ आपके हृदय में भी बनना चाहिए। उसको कहते हैं राम कॉन्शियसनेस, राम चेतना, राम सद्भावना, राम का दिया हुआ आदर्श, राम की मर्यादा, ये हमारे जीवन में उतरेगी तो वो मंदिर वहाँ पर बन रहा है उसका वैल्यू है कुछ। तो जय घोष करने से क्या होता है, हमारी शराब चालू रहेगी, हमारा मांसाहार चालू रहेगा, हमारा व्यभिचार चालू रहेगा और जय श्री राम करेंगे। ये सब ढोंग है, ये बाह्य ढोंग जो है छोड़ना चाहिए हमको और आंतरिक चेतना जागृत करनी चाहिए। हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर, जहाँ जहाँ हमारा प्रभाव है उस सब जगह पर ये बातें करनी चाहिए कि हमें वो गर्व होना चाहिए और वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। इसलिए हमने 22 तारीख को भक्तिवेदांत अस्पताल में विशेष राम जी का अभिषेक रखा है। हाँ, और आपके ग्रुप में मैंने एक फिल्म भी भेजी थी, शायद आज भेजूँगा, कि 750 साल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान किया, जिसके कारण अभी इतने पीढ़ियों के बाद हमारे होते हुए राम जी का मंदिर फिर वहाँ जगह पर होने वाला है और फिर उस जगह पर राम की पूजा आरंभ होने वाली है। हम सब जाएंगे दर्शन करने के लिए, यात्रा भी निकालेंगे वहाँ पर। हाँ, अगर हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु के काल में होते और फिर बार बार जन्म लेके यहाँ पर आए हुए थे और आपका पता होता, कितने गर्व से आप बोलते, अरे जब महाप्रभु आए थे तब मैं था उधर, मैंने देखा है सब लीला। उतना ही महत्व आज है क्योंकि आपके जीवन काल में राम मंदिर का स्थापना होगी। आपके पोते और परपोते कहेंगे कि मेरे दादा परदादा के समय पर ये राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, मेरे दादाजी उस पर थे, फोटो देखो, दादाजी वहाँ पर थे उस समय। गर्व की बात ये होनी चाहिए और वो हमें गर्व है इस बात का कि हमारे जीवित में हमारी बुद्धि अभी अच्छी जगह पर है, खराब नहीं हुई है, भ्रष्ट नहीं हुई है, तो हमारे ऐसे अच्छे स्थिति में जीवन के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये शक्यता है कि एक दो साल में जब गर्दी कम हो जाएगी तो हम वहाँ जाके दर्शन करेंगे। ये भगवान को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि कितनी पीढ़ियाँ इस आशा में बीत गई, कितनी पीढ़ियाँ जीवन समाप्त हो गया, कितने को लोगों का वध किया गया कि राम मंदिर होगा इस आशा में उन्हें जीवन दान दिया, उनके जीवन में राम दर्शन नहीं हुआ उनको, और आज हमारे जीवन काल में हो रहा है। हम सब लोगों ने उनको दान भेजा है उस मंदिर को निर्माण करने के लिए। राम नाम की वो है ना, नाम, वो नाम भी भेजे हैं, राम नाम की पट्टी भी भेजी है। ये कई साल चलता रहा काम राम मंदिर के निर्माण में, एक एक पट्टी जो राम नाम की है वो वहाँ पर लगाई गई है जमीन के अंदर और दीवार के अंदर। ये राम मंदिर तब होगा और तब टिकेगा जब हमारे मन में राम आएंगे तो हमारे भावना से उसकी पुष्टि होगी। ऐसे नहीं होगी कि हमारा जीवन नहीं बदलेगा और हम खाली जय श्री राम करते रहेंगे। वो करना भी अच्छा है और कुछ कहने से जय श्री राम कहना अच्छा है, लेकिन सही परिवर्तन, सही चेंज तब होगा जब हम राम भक्त बनेंगे, कृष्ण भक्त बनेंगे, तब हमारे देश का सच्चा कल्याण होगा, तब हमारी गाय का आदर होगा। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गोमांस का निर्यातक है, था। भारत देश में सबसे अच्छी गायें होती है, इसलिए उसका उसको कत्ल करके उसके मांस एक्सपोर्ट करते थे। कितनी दुर्भाग्य की बात है, पर हम लोगों को कुछ शौक नहीं उसके बारे में, हमारे लोग भी मांस खाने लगे हैं गाय का। तो ये सब बदलना ज़रूरी है और कोई भी क्रांति, कोई भी बदलाव वो अपने आप से शुरू होता है। आप दूसरे को बदलने का प्रयास मत करो, आप खुद बदलो। वो क्यों नहीं बदलता, वो क्यों नहीं बदलती, ये प्रश्न मत पूछो। मैं कब बदलूंगा ये पूछो। जैसे ही मैं बदलूंगा अपने आप मेरे आसपास का वातावरण बदलने लगेगा। हमने ये अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया है? जब मैं भक्त बना था, दरवाजा बंद करो, जब मैं भक्त बना था घर में सब लोग नॉनवेज खाते थे और हमको भयंकर विरोध हुआ, फिर भी हमने जारी रखा हमारा जो काम था, नॉनवेज छोड़ दिया, सब कुछ करके चालू किया। फिर मुझे घर से ही प्रसाद आने लगा, छुप छुप के माँ ऑफरिंग करके आने लगी, ना भेजने लगी। उसके बाद में बहुत सालों के मेरे क्या कहते हैं सतत्य पूर्ण, यानी सतत मेरा प्रयत्न होने से सभी भाइयों ने धीरे धीरे नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। और अब मैं जब उनके घर में जाता हूँ तो मुझे वो मेरा जैसा भोजन बना के भगवान को भोग लगा के खिलाते हैं। जब मैं जाता हूँ तो घर में उनके नॉनवेज नहीं बनता है और बहुत लोगों ने भी छोड़ दिया है। तो मैं स्वयं बदलने के बाद और चिकाटी से बदले रहने के कारण आसपास की स्थितियां बदलते हुए देखी है। और ये सत्य है, हमारे बदलने में दूसरों को बदलने की शक्ति है। जब हम बदलेंगे तो ही दूसरे बदलेंगे, हम सहनशील होंगे दूसरे भी सहनशील होंगे, हम हंसते रहेंगे दूसरे भी हंसते रहेंगे, हम सेवा करेंगे दूसरे भी सेवा करेंगे, हम राम का नाम लेंगे हमारी चेतना में राम आएंगे दूसरों की चेतना में भी राम आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आप बात बोलो, उनको बताते रहो, कहते रहो, विश्वास और भक्ति के साथ कहते रहो। ऐसा है, मैं तो सदैव कहता हूँ कि मैं यात्रा करना शुरू क्यों किया, लोगों को यात्रा करना, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम मरीज देखने का है, फिर भी मैं धुआंधार यात्रा करते क्यों रहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि भारत देश यात्राओं के स्थानों की खान है, अनंत यात्रा स्थली है दुनिया में। एक चित्रकूट में गए थे तो पता चला कि 10 दिन भी कम पड़ेंगे, इतने स्थान और है जो देख नहीं पाए हम, हर जगह राम की लीला है। और हम जाते हैं कुल्लू मनाली और इधर बर्फ देखने, उधर वो करने जाते हैं, उधर क्या करने जाते हैं, क्या करते है? समझ में नहीं आ रहे। इतने सारे स्थान भगवान ने दिए, एक राम के हजारों स्थान है, एक कृष्ण के लाखों स्थान है, नरसिंह भगवान के, वामन देव के हैं, क्या आपको चाहिए बताओ? देवी के स्थान है, गणपति के स्थान है, स्थान ही स्थान, पवित्र स्थान ही स्थान है। देश भी अगर जगेगा ना तो उन स्थानों के पर्यटन पे ही पैसा कमाएगा पूरा, इतनी बढ़िया जगह है। मैं गर्मी में जाकर रहता हूँ उत्तरकाशी में, इतना बढ़िया वातावरण है वहाँ पर, अच्छा टूरिस्ट पास बनाएंगे तो उसको करोड़ों वहीं कमाएंगे लोग, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा धन हमको पता नहीं है कहाँ है, इसलिए हम दूसरों के धन पर देखते हैं कि कितना बच्चा है, वहाँ जाना चाहिए। आपको आपका गौरव पता नहीं है तो दूसरों का गौरव ढूंढेंगे आप और वहाँ जाके अपना दिल लगाएंगे। जिसको अपना गौरव पता है, जिसको अपने बारे में जानकारी है, वो अपने में रममाण हो जाएगा, उसी में आनंद का अनुभव करेगा। तो सब लोग गर्व करो कि आपके जीवन काल में राम का मंदिर बन रहा है, पुनर्स्थापना हो रही है, नया नहीं हो रहा है, वही स्थान है वो। तो हमको विनती की गई है कि उस दिन दीपक जलाओ घर पे दीपावली की तरह, क्योंकि तो जब राम आए थे वनवास से तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या में दीपावली बनाई थी, घर घर दीपक जलाए थे, आंगन में, घर में, बाहर सड़कों पे, सब जगह पर दीपक बलाए थे, मंगल गायन किया गया था, स्वस्ति वाचन कहा गया था, वेदों के ऋचाए का उच्चारण किया था, सुंदर जल का वर्षाव किया था और प्रभु राम का स्वागत किया था, है ना? डिस्को करके नहीं किया था, मंगल गायन, मंगल वाद्य बजाते हुए, श्लोकों का उच्चारण करते हुए, सब जगह दीपक लगाते हुए राम जी का स्वागत किया था। हमको उस दिन घर घर में, अगर आप मानते हो कि आप हिंदू हो और सनातनी हो तो आपके घर में उधर शाम को दीपक लगने ही चाहिए, जितने जो हो सके उतने ज़्यादा लगाओ, पताका लगाओ घर पे अपने कि प्रभु राम दोबारा अपने घर पे आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। हर प्रकार से उत्सव को मनाओ ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने खुश हैं इस बात से और इस बात से सहमत हैं, इसी पक्ष में हम लोग हैं। इस प्रकार से ये तथा कथित अंग्रेजी साल जो है वो शुभ है, क्योंकि इसी साल में प्रभु रामचंद्र अपने मंदिर में बैठेंगे। दक्षिण भारत का एक युवा जो बचपन से गुरुकुल में पढ़ता है, जो सारे शास्त्रों में पारंगत है, उसको कई सारे वेद बाय हार्ट है, वो तो सारी पद्धतियाँ सीख ली है, वो जवान व्यक्ति चीफ पुरोहित के नाम से वहाँ पर नियुक्त किया गया है, साउथ इंडियन। उसका फोटो भी आया था, बहुत तेजस्वी व्यक्ति था वो। अब आप बोलेंगे इतना बुद्धिमान डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना, एमटेक करके विदेश क्यों नहीं गया, ढेर सारा पैसा क्यों नहीं कमाया? नहीं, उसने उसको लगा कि मेरा दौलत इधर है और यही मेरी दौलत है और यही उसकी सही दौलत है कि आज वो रामलला का चीफ पुरोहित बनाए, मरते दम तक चीफ पुरोहित रहेगा। कितने गर्व की बात है। आपको भी तय करना है गर्व किस में करना है। आप हमेशा बोलेंगे मेरा बालक विदेश में पढ़ रहा है, उसमें आपको गर्व है, तो वही पढ़े रहेंगे हम, पर मरने के समय वो वापस लौट के नहीं आएगा देखने के लिए, फ़ोन करेगा खाली। सभी लोगों की यही स्थिति है आजकल। जिन लोगों ने गर्व किया इस बात पर कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़ना चाहिए, और उन्होंने कष्ट किया, मेहनत किया, लोन लिया, उनको पढ़ाया, विदेश भेजा और वो विदेश में सहायक हो गया, उस पर भी गर्व है। मेरा एक बच्चा अमेरिका में, एक बच्चा कनाडा में है, इस पर ही गर्व करते हैं। जब मरने का समय आया, कोई बच्चा अमेरिका में भेजा हुआ नहीं आया, इधर अकेले मरना पड़ा, पड़ोस हुए ने साथ संस्कार किया, वो बोला मैं नहीं आ सकता। जिस चीज़ में गर्व किया ना, वही आपके दुख का कारण है। इसलिए हमारे बच्चों को कभी हमने संस्कार दिया ही नहीं कि आपको विदेश में पढ़ना है, बोला यहाँ रहो, देश में रहो, यहाँ की भूमि की सेवा करो, यहाँ का पानी पीते हो, यहाँ खाना खाते हो, यहाँ पर जन्म लिया है, यहाँ पर आपका पोषण हुआ है, आपकी माँ यहाँ की है, आप भी यहीं रहो और देश को रोशन बनाओ। धन के लालच में यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, सब कुछ अपना चड्डी निकाल के भी भाग रहे उधर, और उनकी चड्डी पहन रहे हैं। देखो आप सोचो ना, आपका वस्त्र छोड़ कर उनके वस्त्र पहन रहे हैं, उनकी तरह सोच रहे हैं, उनकी तरह बोल रहे हैं, उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। अपनापन सब छोड़ दिया, उन्होंने सारा कपड़ा उतार के नंगा बना दिया हमको, और अपनी तरह बनाने का प्रयास किया, और हम लोग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पे अपने को आपका अभिमान नहीं है। राम पे अभिमान करो, कृष्ण पे अभिमान करो, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी धरोहर है, वो हमारे जीवन की बुनियाद है। आओ सब मिलकर ये बदलाव बनाएं, घर घर में इसकी बातें करें, माँ को बताएं, पिता को बताएं, बालक को बताएं, सबको बताएं कि हमारा गर्व किस में होना चाहिए और किस में है। और निश्चित रूप से अगर आप इस जोश से बात करेंगे, आपकी बात सुनकर लोग प्रभावित होंगे, क्यों नहीं होंगे? अगर आपको विश्वास है तो आप लोगों को दे सकते हो, आपके अंदर नहीं है तो लोगों को क्या देंगे आप? अगर आपके मन में गर्व है राम के ऊपर, तो गर्व आप दूसरों को देंगे, आपको मिलकर लोगों को गर्व मिलेगा। अगर आपके मन में शर्मिंदगी है राम का नाम लेने में, तो लोग आप पर हावी हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे राम, जय श्री राम। कोई प्रश्न है किसी को? आपने कहा था कि आप प्रश्न लेकर तैयार रहेंगे, उसका क्या हुआ? यस, प्रश्न क्या है?
ऐसे केस में ऐसा लगता है कि मैं मेरे प्रोफेशन से वही प्रमोट करता हूँ।
देखो, इनका प्रश्न ऐसा है कि हम लोग वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये वो साइंस लोगों को पढ़ाते हैं, और वही भी हमारा भी प्रोफेशन वही है, वो भी हम लोग पढ़ा, अध्यापक हैं, शिक्षक है, वही हमारा इनकम है। जो आपका स्कूल आपको नहीं दे रहा है, वो आप अपने घर में बच्चों को दीजिए अपने आप, कौन रोक रहा है आपको? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये पूरे आप तरह आपके हाथ में ना। आपके आमदनी के लिए आप साधन कर सकते हो, क्योंकि आमदनी सबके सब डॉक्टर नहीं बन सकते, या सब अध्यापक नहीं, मतलब सब जो भी कुछ नहीं बन सकते ना, आपको जो बनना है अपना, कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई कुछ है, कोई वायरमैन है, कोई कुछ दुकान में स्टील बेचता है, अपना अपना व्यवसाय का तरीका है, जो अपने कर्म में है वो है। लेकिन वो आमदनी का साधन तक रहने दो उसको, वो चरित्र बनाने का साधन मत बनाओ। आमदनी को अपनी जगह पर रखो, चरित्र बनाने के लिए दूसरा काम करो। आप अपने बच्चे को पैदा कर रहे हो, जन्म दे रहे हो उसको ना, उसको क्या बनाना है आपके हाथ में है, माँ के हाथ में है किस विचार से दूध पिलाना है उसको। फिल्म स्टोरी की याद करते दूध पिलाना है कि भगवान का नाम लेते उसको स्तनपान कराना है कि नहीं। अभी आज की माता बच्चे को स्तन पे लेके टीवी में सीरियल देख रही है ऐसे ही है ना, कोई खून खराबा हो रहा है, कोई रेप हो रहा है, वो देख रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, क्या संस्कार दे रहे हैं आप। मैं सदैव कहता हूँ कि हर माँ को बालक को दूध पिलाने के समय पे अकेले कमरे में भगवान का ध्यान करते हुए या कथा सुनते हुए दूध पिलाना चाहिए, ताकि वही संस्कार वो दूध के माध्यम से बालक के चेतना में पहुँचेगा, उसके शरीर को पोषण देगा, उसकी आत्मा को पोषण देगा, और वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। भले आप फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हो, आमदनी तक सीमित रखो उसको, घर में प्रोग्राम बनाओ, लोगों को गीता के श्लोक सिखाओ, राम रक्षा सिखाओ, नरसिम्हा कवच सिखाओ, ब्रह्म संहिता सिखाओ, आपके पूरे हाथ में है। जब तक बच्चा बड़ा होता है आपका सुन रहा है उसको सिखा दो, बाद में सुनना बंद करेगा, बचपन में सिखाया हुआ कहीं नहीं भूलेगा, किधर भी नहीं भूलेगा, ध्यान रखना इस बात का। 16 साल का हो जाएगा आपका मानना छोड़ देगा वो, लेकिन 16 साल तक जो भी आपने संस्कार दिए हैं वो उसके चेतना के गहराइयों में मूल में बसे होंगे। जब बच्चा बालक होता है ना छोटा सा, तो जो भी जो वातावरण रहता है वो वातावरण का पूरा स्वीकार करता है, उसको समझता नहीं, जो बता रहे वो सुनेगा। आप बोलेगा राम राम तो भी राम राम बोलेगा, हमारे बच्चे कैसे राधे राधे राम राम हरे कृष्णा बोलते ना, जय करो तुरंत दंडवत करते हैं, उनको पता नहीं है, उनको बताया जा रहा है ऐसे करो, और उसके बाद शाबाश की मिलती है तो उनको लगता है हाँ ये अच्छा है, ये करने के बाद शाबाश की मिलेगी, ये हमको करना है, गुड बॉय बोलेगा तो हमको वापस करेगा वो, आप उसके करवाओ उसको शाबाश की दो और गुड बॉय बोलो, तुरंत वो वही करेगा, बार बार करते रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अच्छा लगता है गुड बॉय बोलने के लिए। कैसे आप उसको बताओगे वैसे वो बनेगा, इसलिए आप पर पेशे पर आप छोड़ दो आप चिंता, वो उसको आमदनी का साधन बनाए रखो, उसमें प्रमोशन प्राप्त करो, जो करना है करो, घर पे आपके हाथ में जो है वो आप करो, सब लोग करो, ये पूछ रहे मतलब उसको नहीं करना है, आप सब लोग करो। आपल्या मराठी मध्ये एक गोष्ट एक म्हण आहे की आड्यात नाही तर पोऱ्यात कुठं येणार, है ना, अगर कुएं में पाणी नाही आहे तो बाल्टी डालेंगे तो कहाँ से पानी आएगा, तो कुएं में होगा तो बाल्टी डालेंगे बाल्टी में आएगा, वैसे आप में नहीं होगा तो बच्चे में कहाँ से आएगा, और आप में अगर छोटा मोटा होगा लेकिन आपने बच्चे को दिया ही नहीं तो बच्चे में कहाँ से होगा, वो आपको देना है, अपनी अगली पीढ़ी को आपको बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है वो। गुरु न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात, भागवत में लिखा है कि आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, जब तक आपके ऊपर निर्भर जो लोग हैं उनको आप भगवान की पहचान नहीं कराते हैं तब तक गुरु को शिष्य लेने का अधिकार नहीं है, पिता को विवाह करने का अधिकार नहीं है, माता को जन्म देने का अधिकार नहीं है, गुरु को शिष्य बनने का और राजा को राजा बनने का अधिकार नहीं है। राजा प्रजा को भक्ति दिलाएगा अपने शासन के अनुसार, माता संतान को भक्ति देगी, गुरु शिष्यों को भक्ति देगा, तब वो गुरु माता या राजा कहलाने के योग्य है। विवाह करना क्या, कुत्ता बिल्ली भी विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, क्या बड़ी बात है, हमारे बच्चे पैदा करने के बाद संस्कार देते हैं उनको, हम तो हम गर्व से कहते हैं कि हम इसके पिता हैं और वो हमारी प्रतिमा है, जैसा मैं हूँ वैसा हमारा बच्चा है, तो बोलेंगे किसका बच्चा है, प्रभु जी का बच्चा है, ये हमारा गर्व होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा बच्चा कनाडा में पढ़ता है और कभी नहीं आएगा लौट के, मुझे मरने के बाद भी नहीं आएगा, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, आपने इतना खर्च किया वो उधर चला गया, आपका ख़त्म हो गया आपका रिश्ता उसके साथ, फोन ही कर रहा खाली बस। सब लोग अमेरिका जाते हैं और बच्चों को बच्चे माँ बाप को पैसा खर्च करके वृद्धाश्रम में रखते हैं, बोले बढ़िया से बढ़िया कॉस्टली महंगा वाला रखो, वहाँ मेरे माता पिता को रखो, जितना चाहे पैसा बोलो उनको सुविधा दो, लेकिन मैं नहीं आ सकता, ये सुविधा नहीं चाहिए हमको, हम तड़प तड़प के मरेंगे, ये सुविधा का क्या लाभ है। वृद्धाश्रम में विषय बदली कर रहा हूँ मैं आपका, वृद्धाश्रम में किसके बच्चे रहते हैं, किसके माता पिता रहते हैं पता है आपको, केवल अमीरों के, पढ़े लिखों के, बड़े बड़े अधिकारियों के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, और गरीब किसान का माँ बाप जो है उसके घर पे मरता है उसके सामने, कभी वो गरीब आदमी ना उसको बाहर नहीं भेजता है, उसकी संस्कृति है, वो पैसे नहीं इसलिए नहीं भेजता। आप देखो कभी भी कौन से भी वृद्धाश्रम में जाके इंक्वायरी करो, कोई किसान का कोई गरीब आदमी का माँ बाप है क्या उधर? सब बड़े बड़े अफसरों का ही माँ बाप रहते हैं उधर। तो दुर्भाग्य है उनका ये कि बड़े बड़े अफसर बनाए बच्चों को और उनको माँ बाप देखने का टाइम नहीं है। आज अगर ज़रूरत है तो इस संस्कृति को पुनः जागृत करने की ज़रूरत है। जिन्होंने जन्म दिया, टट्टी पेशाब निकाला, चलने को बोलने को सिखाया, खाना पीना खिलाया, बड़ा किया, एजुकेशन दिया, शिक्षण दिया, सब कुछ करके एक सम्माननीय जीवन दिया, वो जब बूढ़े हो रहे हैं, जब आपको चलने को नहीं आता था तब वो आपको चलाने को सिखाते थे, जब आप टट्टी पेशाब करते थे बिस्तर में तो वो साफ करते थे, अभी वो अवस्था में आ गए, वो बिस्तर में टट्टी पेशाब कर रहे हैं, उनको चलने को नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जो किया था वो हमको करना चाहिए। तब हमारा ऋण जो है ना वो थोड़ा बहुत, ऋण चुकता नहीं है, थोड़ा बहुत चुकेगा और वही हमारी संस्कृति वहाँ बढ़ेगी। संस्कृति को बढ़ाओ, सबसे बड़ी वेल्थ वही है हमारी, हमारी संस्कृति को जगाना ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और क्या प्रश्न है पूछिए। उसको सब सिस्टम को जो है सिस्टम सही है पालन करने का। हाँ
अभी चालू कैसा करेंगे? अभी तो ठंडा है सर।